الحمد لله وكفى وصلاة به الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نیکی اور گناہ یہ دو اپوزٹ کانسیپٹس ہیں، یہ دو متضاد راستے ہیں۔ نیکی کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے اور گناہ کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے۔ یہ راستوں کا کانسیپٹ یہ ہمارے دین نے بار بار ہمیں دیا۔ قرآن پاک کے اندر راستے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے، اور یہ دونوں کی طرف، نیکی کی طرف کے لیے بھی استعمال ہوئے اور گناہ کی طرف کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کرے گا، مجاہدے کرے گا، ہم اس کے لیے اپنی طرف آنے والی راہیں ہموار کر دیں گے، اپنی طرف آنے والے راستے ہموار کر دیں گے، ان کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستوں کا لفظ استعمال کیا۔ نیکی کا ایک اور راستہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں پکڑنے کے لیے کہا کہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ تم اتباع کرو ان لوگوں کے راستے کی جو کہ میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ کے اندر ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی مومنین نے کہ اے اللہ ہمیں مستقیم والا راستہ دکھا دیجئے، سیدھا راستہ، اس تک ہدایت عطا فرما دیجئے، اس کی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ تو یہ راستے کا لفظ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کنورسلی دوسری طرف جائیں تو گناہ کے لیے بھی راستوں سے ہی ریلیٹڈ ایک لفظ استعمال فرمایا۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انگریزی میں کہتے ہیں فوٹ سٹیپس، یعنی قدموں سے بھی جو ہے وہ ایک راستہ ہی بنتا ہے، تو اس راستے کی تم پیروی نہ کرو۔ اب راستوں کے لفظ کے اوپر یا راستوں کے کانسیپٹ کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، اور وہ یہ کہ راستہ جو ہے وہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک سورس پوائنٹ سے ڈیسٹینیشن پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ، جو جگہ استعمال کی جاتی ہے، جو طریق استعمال کیا جاتا ہے، اس کو راستہ کہتے ہیں۔ یعنی سورس جو ہے وہ تو پوائنٹ ہے، ایک مقام ہے سورس، جہاں سے کہ آپ کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ڈیسٹینیشن جو ہے وہ بھی ایک مقام ہے، ایک اسٹیشن ہے جہاں پر کہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن راستہ جو ہے وہ سورس سے آپ کو لے کے چلے گا، یا آپ اس کو لے کر کے چلیں گے، اس کے اوپر قدم رکھیں گے اور پھر چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ ایونچولی جو ہے وہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے۔ راستے کے اوپر کوئی کھڑا نہیں رہتا، سورس پہ انسان کھڑا رہ سکتا ہے، डेस्टिनेशन पर जब पहुंच जाएंगे तो वहां पे खड़ा रह सकता है, लेकिन रास्ते पे खड़ा जो है वो कौन रह सकता है जिसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो, या फिर जिसको के पता ही ना हो कि मेरी मंजिल क्या है, तो वो बेचारा खड़ा रह जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ जाना है। लेकिन रास्ते का मकसद खड़ा रहना नहीं होता, जब भी आप अपनी गाड़ी को किसी रास्ते पर डालते हैं तो फिर आप चलना शुरू कर देते हैं, किसी भी तरफ चल रहे हो लेकिन चलना शुरू कर देते हैं, यानी गाड़ी खड़ी नहीं रहती। हाईवे पे जैसे ही आप दाखिल होते हैं, किसी स्ट्रीट के ऊपर आप अपनी ड्राइववे से गाड़ी निकाल करके स्ट्रीट पे जाते हैं, तो अब आप स्ट्रीट के ऊपर गाड़ी को चलाते हैं। तो जब ये बात समझ में आ गई कि रास्ता जो है वो एक पॉइंट से दूसरी तक पॉइंट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रास्ते के ऊपर कोई खड़ा नहीं होता, तो अब हम कुरान पाक से के इस कॉन्सेप्ट पे नजर डालें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नेकी के लिए भी रास्तों का लफ्ज इस्तेमाल किया, सुबुल, सबील, सिरात, और बुराई के लिए भी रास्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया कि खुतुवात शैतान, कि उसके तुम फुटस्टेप्स की पैरवी ना करो, उसके जो है वो कदमों के ऊपर तुम ना चलो। तो जब दोनों जगहों पे अल्लाह ताला ने रास्तों का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, तो अब हमारे सामने एक बात खुल के सामने आ जाती है, वो ये कि जब कोई इंसान नेकी के रास्ते के ऊपर कदम रखता है तो फिर वो खड़ा नहीं रहता, बल्कि वो उसके ऊपर आगे बढ़ता है, उसकी गाड़ी जो है वो आगे चलती है। उसकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल कहां से मिलता है, वो भी हमें कुरान पाक से पता लगता है कि बाकायदा पेट्रोल प्रोवाइड किया जाता है कि गाड़ी खड़ी ना रह जाए। और वो पेट्रोल किस शक्ल में आता है, इसी आयत के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करता है हम उसको अपने तक पहुंचने के रास्ते उसके लिए हमवार कर देते हैं, यानी कि सड़क जो है वो टूटी फूटी नहीं रहती, बल्कि उस सड़क को जो है वो हमवार कर देते हैं ताकि उसकी गाड़ी जो है वो उसके ऊपर आसानी के साथ चल सके। लेकिन गाड़ी चलने के लिए खाली ये नहीं होता कि आपको रास्ते का तय्यन हो गया कि मुझे इधर जाना है, खाली ये काफी नहीं होता गाड़ी चलाने के लिए, बल्कि गाड़ी चलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो फ्यूल कैसे मिलता है, सुभान अल्लाह, अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइन्ना अल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला जो है वो तहकीक, अल्लाह ताला जो है जरूर बिल जरूर, लाम लमअल जो है वो लाम उसके लिए आता है, यानी कि एम्फेसिस के लिए आता है, और मअल मुहसिनीन के मोहसिनीन के यानी नेकोकारों के साथ होते हैं, यानी अल्लाह ताला की मईयत जो है वो नेकोकारों के लिए बतौर फ्यूल का काम देती है। तो अल्लाह ताला आपको तन्हे तन्हा नहीं छोड़ देते कि भाई तुम्हें बस रास्ते का तायुन करवा दिया कि बस यहां से आओगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे, अब उसके ऊपर चलना तुम्हारा मसला है, गाड़ी के लिए पेट्रोल डलवाना तुम्हारा मसला है, पेट्रोल के लिए जो है वो पैसे कमाना तुम्हारा मसला है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी मईयत तुम्हें हासिल है, तुम अपने आप को तन्हा ना समझो, यू आर नॉट ऑन योर ओन, आई एम विद यू थ्रू आउट योर वे, पूरी की पूरी जर्नी में जो है वो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। तो अल्लाह ताला जो है वो नेकी के रास्ते के ऊपर बाकायदा मोमिनीन के साथ होते हैं, वो उनको तने तन्हा नहीं छोड़ देते, उनको जो है वो फ्यूल प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि उनकी गाड़ी जो है वो कहीं खड़ी ना हो जाए। तो ये तो नेकी के रास्ते वाला मामला हुआ, और दूसरी तरफ बुराई का भी एक रास्ता है। अब बुराई का रास्ता जो है वो दरअसल हमारे लिए समझना और भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि बुराई का रास्ता वो क्या है कि हम जब बुराई एक कर लेते हैं, जब हम कोई बुराई यानी गुनाह जो है वो कर लेते हैं, तो हम ये ना समझें कि बस दिस इज द एंड ऑफ आर गुनाह, बस मैंने एक ही गुनाह किया है और उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, मेरी गाड़ी जो है वो गुनाह के रास्ते के ऊपर गई और खड़ी हो गई, अब आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, रास्ते के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं रहती, रास्ते के ऊपर गाड़ी आगे चलती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई इंसान एक गुनाह कर लेता है और फिर वो उस गुनाह से तौबा नहीं करता, उस गुनाह से जो है वो बाज नहीं आता, निदामत नहीं करता, बल्कि उसको जस्टिफाई करता है, उसको कहता है कि मैंने जो है वो कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया, कौन सी ऐसी बड़ी बात मैंने कर ली, ये तो सभी करते हैं, या इसके अंदर हर्ज ही क्या है, ये तो आज के दौर में जो है वो हर कोई करता फिर रहा है। इस तरह की जब वो बातें करता है तो गोया कि उसने अपने गुनाह को जस्टिफाई किया, गुनाह को जो है वो कोई उजर पेश किया और फरमाया कि उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह, कि गुनाह का उजर पेश करना वो गुनाह से ज्यादा बुरा होता है, इसलिए कि गुनाह कर लिया तो उससे इंसान तौबा कर लेगा, गुनाह खत्म हो जाएगा, उसकी स्लेट से उसको मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब उजर उसने पेश किया, उसको जस्टिफाई किया, उसके आगे जो है वो जुबान चलाई, तो अब जो है ये उसके नामे अमाल के अंदर परमानेंट हो गया। परमानेंट क्या हो गया, जब तक तौबा नहीं की उस वक्त तक के लिए ये उसके अंदर लिख दिया गया। तो हम जो ये समझते हैं ना कि बस मैंने एक गुनाह करना है या मैंने एक मौके पर गुनाह करना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई मेरे घर के अंदर एक दावत है तो मैं बस इस दावत में गुनाह करूंगा, इसके बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, ये एक ही तो गुनाह है और चूंकि सभी लोग कर रहे हैं इसे मैं भी कर रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं होता। बल्कि गुनाह का जो है वो एक रास्ता है और इस रास्ते को समझाने के लिए अंग्रेजी जुबान का एक टर्म है कि जिसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप, कि जब आप एक स्लोप के ऊपर कदम रख देते हैं तो फिर आप उसके ऊपर खड़े नहीं रह पाते, आप अपना बैलेंस लूज कर जाते हैं और स्लोप जहां पे जा रहा होता है आप उसके साथ फिसलना शुरू हो जाते हैं। अब आपके ऊपर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता, आप समझते हैं कि नहीं मैंने स्लोप पे कदम रखा है मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन स्लोप जो है वो ऐसा स्लिपरी स्लोप है कि आप अपना बैलेंस फौरन लूज कर जाते हैं, लड़खड़ा करके गिर पड़ते हैं और आप गिरते चले जाते हैं। तो ये स्लिपरी स्लोप का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी भी गुनाह को जब करते हैं तो वो गुनाह हमारी जिंदगी का आखिरी गुनाह नहीं होता, बल्कि वो गुनाह जो है वो दूसरे गुनाह को लीड करता है, दूसरे गुनाह तक लीड करता है, फिर वो दूसरा गुनाह जो है वो तीसरे गुनाह तक लीड करता है, तीसरा चौथे तक लीड करता है। तो एक भी गुनाह जो है वो मोमिन जस्टिफाई नहीं कर सकता, मोमिन किसी एक गुनाह को भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये मैंने बस ऐसे ही कर लिया था। मोमिन जो है वो गुनाह के बारे में पैरानॉइड होता है, एक लफ्ज है अंग्रेजी का बींग पैरानॉइड अबाउट समथिंग, यानी आप दिल के अंदर जो है ना वो एक वहशत फील करते हो, आपको एक हर वक्त एक फिक्र लगी हो किसी बारे में, उसको कहते हैं पैरानोया। तो मोमिन जो है वो किसी भी गुनाह को लाइट नहीं ले सकता कि ये तो छोटा गुनाह था, ये तो गुनाह सगीरा की लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है तो इस वजह से मैंने कर लिया, कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई, ये बड़ा गुनाह जो है वो जो लिस्टों में लिखा हुआ है बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह वो तो मैं करता नहीं हूं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई कि मैंने छोटा गुनाह कर लिया। ऐसा मोमिन नहीं करता, ऐसा खुसूसन सालिक नहीं करता, बल्कि हर गुनाह के बारे में वो पैरानॉइड होता है, इसलिए कि वो समझता है कि ये गुनाह जो है वो शैतान के रास्ते के ऊपर गोया कि मैंने कदम रख दिया, अब इस रास्ते के ऊपर मैंने फिसलते ही चले जाना है। तो वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो ना पैरानॉइड होता है। जबी तो जो ताबईन आए थे तो वो अपने शागिर्दों को तबा ताबईन को फरमाते थे कि तुम लोग अगर सहाबा कराम को देख लो तो तुम उनको मजनू समझो, तुम उनको पागल और दीवाने समझोगे। क्यों? इसलिए कि दे वर पैरानॉइड अबाउट दिस। ये जो पैरानॉइड का लफ्ज इंग्लिश में आता है ना, ये वही दीवानगी के लिए इस्तेमाल होता है, असल में इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो ये दीवानगी कहलाएगा। तो मोमिन जो है वो गुनाह से बचने के बारे में दीवाना होता है और लोग उसको दीवाना समझते हैं, उसके घर वाले उसको कहते हैं ये दिस इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ये तो बहुत ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा वो है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता। हाँ, बड़ों से पूछता है, वो खुद से डिसाइड नहीं करता कि ये गुनाह मैंने करना है कि ये नहीं करना और ये गुनाह है कि ये गुनाह नहीं है, वो खुद से डिसाइड नहीं करता, वो अपने नफ्स की पैरवी नहीं करता, बल्कि वो बड़ों से पूछता है, बड़ों की बात सुनता है, बड़ों से समझ करके फिर वो फैसला कर लेता है कि नहीं ये गुनाह मैंने नहीं करना। अब चाहे उसको घर वाले कितना ही लानतान क्यों ना करें, चाहे उसको फैमिली वाले दफ्तर वाले मुआशरे वाले कितना ही लानतान क्यों ना करें, वो जो है वो उस गुनाह के ऊपर नहीं कदम रखता। हाँ, अगर बड़ों ने उसको मशवरा दिया कि ये सिचुएशन ऐसी है, तुम्हारा दिल इसके ऊपर राजी नहीं है, तुम्हारे दिल में नफरत है इसके लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि फितने को अवॉइड करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह बन जाएगा, अगर फितना खड़ा हो जाएगा तुम्हारे घर के अंदर या तुम्हारे दफ्तर के अंदर या तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तो वो एक ज्यादा बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो फिर दो गुनाहों के दरमियान से कि माँ बहन जो है वो छोटे गुनाह को तुम्हें अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे दिल में नफरत तो है ना, तुम्हारे दिल में कराहियत है, तुम मजबूर हो यहां पर, तो अब वो बड़ों की मान करके जो है वो दो गुनाहों में से छोटे को चूज करता है, उसको करना पड़ता है हालात की वजह से, मौके की वजह से। लेकिन वो अपने दिल की रग़बत की वजह से वो नहीं कर रहा होता, दिल की चाहत की वजह से, दिल की ख्वाहिश की वजह से कि कुछ जो है मेरा इसके अंदर फायदा निकल रहा है, वो इसकी वजह से नहीं कर रहा होता वो ये काम, वो बड़ों के कहने की वजह से कर रहा होता है। इसी वजह से जो लोग खुद से नेक बन रहे होते हैं, बगैर किसी से पूछे हुए वो नेक बन रहे होते हैं, किसी के गाइडेंस को वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो इस मामले में आके फंस जाते हैं। अब वो क्या करेंगे जी, हर तरफ गुनाह है, दो गुनाह है, अब उनमें से किसको चूज करना है, किसको चूज नहीं करना, किस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे? इधर भी उनकी ख्वाहिश पूरी होती है, उधर भी उनकी ख्वाहिश पूरी होती है, या फिर जो है वो अगर गुनाह नहीं करेंगे तो इधर भी जो है वो फितने में मुब्तला होंगे, उधर भी वो फितने में मुब्तला होंगे। अब वो फंस जाते हैं आकर के, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं होता, वो किसी से पूछ करके नहीं चलते। लेकिन जो पूछ करके चलता है तो फिर उसके लिए ये मामला आसान हो जाता है। दिल में उसके नफरत होती है, कराहियत होती है, बड़ों के कहने की वजह से वो दो बुराइयों में से छोटी बुराई को चूज कर रहा होता है, इसलिए कि हालात इतने खराब होते हैं। लेकिन वो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से गुनाह नहीं कर रहा होता। तो ये जो हमारे दीन ने रास्तों का कॉन्सेप्ट दिया, इसको समझना इंतहाई जरूरी नए आने वालों के लिए। एक छोटे से समरी दोबारा कर देते हैं कि नेकी का भी एक रास्ता है, रास्ते के ऊपर जब इंसान की गाड़ी पड़ती है तो वो रास्ते पे आगे चलती है, वो खड़ी नहीं रहती। उसी तरीके से हमारी दीन ने गुनाहों के लिए भी रास्ते का कॉन्सेप्ट दिया। जब हम एक गुनाह कर लेते हैं और उससे तौबा नहीं करते तो हमारी गाड़ी उस गुनाह के रास्ते के ऊपर चल पड़ती है, अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी वजह से मोमिन जो है वो अपने एक गुनाह को भी जस्टिफाई नहीं करता, एक गुनाह को भी जो है वो अपनी रग़बत से नहीं कर रहा होता। बल्कि मोमिन का क्या काम होता है कि जब उससे बतकाज़ाए बशरियत, क्योंकि वो बशर है, वो इंसान है, उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात भी रखी हैं, माहौल भी ऐसा है, तो जब इतने सारे फैक्टर्स के तहत वो कभी गुनाह हो जाता है उससे, अगर उससे गुनाह हो जाता है तो फिर वो उसको जस्टिफाई नहीं करता, बल्कि क्या करता है, तौबा कर लेता है। चूंकि वो तौबा कर लेता है तो अब जो कि उसकी गाड़ी गुनाह के रास्ते के ऊपर पड़ गई थी, एक दफा एक गुनाह करने से खुतवात शैतान के ऊपर उसकी गाड़ी ने कदम रख लिया था, तौबा करने से उसकी गाड़ी जो है फौरन यू टर्न कर लेती है। तौबा इज बेसिकली यू टर्न। इस आजिज के जहन में ये बात, ये सवाल भी आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो लिखा और जाकर के इतिकाफ के अंदर बाकायदा बड़े बड़े उलमा से डिस्कस किया इसको, और फिर डिस्कस करने के बाद, उनकी कॉन्फर्मेशन लेने के बाद, फिर आपके सामने ये बात दोबारा रख रहे हैं आजिज कि तौबा जो है वो 100% ही का नाम है, 99% गुनाहों से तौबा नहीं हो, देर इज नो सच थिंग एज 99% से तौबा, देर इज नो सच थिंग एज तौबा फ्रॉम 80% गुनाह, ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जी मैंने 80% गुनाहों से तौबा कर ली, कि जी मैंने 99% गुनाहों से तौबा कर ली, वो तौबा नहीं होती। ये उर्दू जुबान के अल्फाज का दरअसल हेर फेर है। हम उर्दू जुबान में जब बोलते हैं तो उसमें अल्फाज चूंकि इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जी इस बंदे ने शराब पीने के गुनाह से तौबा कर ली, इस शख्स ने जो है वो जिना से तौबा कर ली, इस शख्स ने जो है वो झूठ बोलने से तौबा कर ली, तो चूंकि अल्फाज हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अब हमारे जहन में ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि जी के एक गुनाह से तौबा भी जो है वो भी तौबा होती है, और 10 गुनाहों से तौबा वो भी तौबा होती है, और 90% गुनाहों से तौबा वो भी तौबा होती है। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, इस बात को हमें समझना है और इसको याद रखना है कि तौबा जो है वो 100% से होती है। अब इसको उलमा से पूछने का फायदा भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के खलीफा मौलाना तल्हा कासमी साहब मुफस्सिर कुरान मशहूर हैं इंडिया के अंदर, जो उनका बयान होता है माशाल्लाह कुरान से क्या खूबसूरत बातें करते हैं, उनसे इस आजिज ने इस कॉन्सेप्ट को बैठ करके डिस्कस किया, उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में समझाया, दो मतलब चंद अल्फाज में उन्होंने बात जो है वो खोल के रख दी, और ये यू टर्न का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया दरअसल, और इसके ऊपर उन्होंने दलील दी। दलील क्या दी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो हुक्म फरमाया है तौबा का, उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو. توبہ کیا ہوتی ہے؟ رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ یو ٹرن، اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کرو اپنے آپ کو. اب ٹرن جو کرنا ہے وہ آپ اگر یو نہ کریں، یو ٹرن نہ کریں، آپ 90% 90 ڈگریز کا ٹرن لے لیں، آپ جو ہے وہ 60 ڈگریز کا ٹرن لے لیں، تو آپ جو گناہ کریں چاہے وہ چھوٹا تھا چاہے بڑا گناہ تھا، وہ گناہ جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان کا راستہ ادھر جا رہا ہے، رحمان کا راستہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل پیچھے ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کا راستہ یوں جا رہا ہے، رحمان کا راستہ اس کے 45 ڈگریز کے اوپر ہے، یا شیطان کا راستہ ادھر جا رہا ہے، رحمان کا راستہ اس سے جو ہے وہ 90 ڈگریز پر ہے. نہیں، شیطان کا راستہ جدھر ہے، رحمان کا راستہ اس سے بالکل 180 ڈگریز پر ہے، اور رحمان کا راستہ جدھر ہے، شیطان کا راستہ اس سے 180 ڈگریز پر ہے. تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی میں نے چونکہ چھوٹا گناہ کیا تھا اس وجہ سے میں رحمان کے راستے سے خالی 90% ادھر ہوا ہوں، یا میں رحمان کے راستے سے صرف 45% میں نے رخ موڑا ہے کیونکہ چھوٹا سا گناہ ہے. ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ رحمان کے راستے سے 180 ڈگریز جو ہے وہ دوسری طرف ہے، 180 ڈگریز اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. اب اس سے واپس رحمان کے راستے پہ آنے کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک ہی آپشن ہے، دیر آر نو ٹو آپشنز، ایک آپشن ہے اور وہ ہے یو ٹرن. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو جیومیٹری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ڈگریز حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. یو ٹرن جب تک نہیں کریں گے آپ ادھر ادھر تو جا سکتے ہیں، رحمان کے راستے پہ واپس نہیں آ سکتے. یعنی توبہ از یو ٹرن، توبہ 100% راستے کو چھوڑ کر کے، اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرنا، 100% یہ توبہ ہوتی ہے. اب پھر ہم اردو زبان کے اندر یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ جی اس نے شراب سے توبہ کر لی، اس نے زنا سے توبہ کر لی، اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی، تو اس بات کو سمجھنے کہ وہ دراصل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیں الفاظ کتنا دھوکہ دیتے ہیں، وہی ہوتا ہے کہ جی ہم جب بڑوں سے پوچھتے نہیں ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، تو الفاظ سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم سمجھنا شروع ہو گیا کہ جی یہ 10% گناہوں سے توبہ تو کر لی نا، باقی 90% سے توبہ بعد میں کر لیں گے. نہیں، وہ جو 10% سے جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ توبہ کر لی، وہ دراصل ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں، حقیقت اس کی یہ ہے کہ ابھی اس نے 10% گناہ چھوڑے ہیں اور 90% گناہ چھوڑے نہیں ہیں، اس میں ابھی یہ کامیاب نہیں ہوا. یا میں نے جو ہے وہ شراب کا گناہ چھوڑ دیا ہے، زنا کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، لوگوں کے دل دکھانے کا گناہ، اور بد نظری کا گناہ، اور غصے کا گناہ، اور اس کا گناہ، وہ ابھی میں نے چھوڑا نہیں ہے، ابھی میں اس کے میں قابل نہیں ہوا ابھی تک اس گناہ کو چھوڑنے کا. تو دراصل ہم چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہم توبہ کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. تو چھوڑنا ایک الگ پروسیس ہے، توبہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. توبہ 100% سے ہوتی ہے اور چھوڑنا جو ہے وہ 1% سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایک گناہ چھوڑتا ہے انسان، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اپنے راستے کی طرف، اس کے راستے ہموار کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کی طلب کے اوپر، اس کی جستجو کے اوپر، اس کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے رہتے ہیں. وہ دوسرا گناہ چھوڑتا ہے، پھر تیسرا بھی چھوڑتا ہے، پھر چوتھا بھی چھوڑتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ کسی نیک آدمی کی صحبت مل جاتی ہے، کبھی جو ہے جماعت میں چلا جاتا ہے، مسجد کے ماحول میں اس کو جانے میں خوشی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ مسجد میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے، وہ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کے کسی ولی کے پاس جا کر کے ان کی محفل میں بیٹھا پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دیتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے جو ہے وہ باقاعدہ اصلاحی تعلق بھی جوڑ لیتا ہے، پھر ان کے پاس جا کر کے جو ہے وہ ذکر اذکار سیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے، ان سے جو ہے وہ اپنے معاملات ڈسکس بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے اس کی زندگی میں سے گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. 50% چھوٹ جاتے ہیں، 60% چھوٹ جاتے ہیں، 70% چھوٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خصوصی اولیاء میں شامل فرما دیتا ہے، 100% اس کی زندگی سے گناہ چھٹ جاتا ہے. کبھی تقاضۂ بشریت ہو جاتا ہے، وہ امیڈیٹلی اسے توبہ کر لیتا ہے. वो जमता नहीं है अपने एक भी गुना के ऊपर। तो इस तरीके से फिर उसके रास्ते हमवार होते हैं, वो जो है वो सारे गुना छोड़ने के भी काबिल हो जाता है। लेकिन तौबा से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये प्रोसेस की बिगिनिंग जो है वो तौबा से हुई थी। उस बिगिनिंग के वक्त उसने 100% से तौबा करी थी। जो तौबा के कलिमात पढ़ाए जाते हैं कि जी बैत का ताल्लुक बनाया तो क्या कहते हैं मशायख के, तौबा के कलिमात पढ़ लो, वो तौबा के कलिमात अपने तमाम गुनाहों से तौबा के लिए ही होते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बी व अतूबु इलैह, तमाम गुनाहों कुल ज़म्ब से जो है वो मैंने इस्तग़फार करी, वह अतूबु इलैह और मैं अल्लाह आपकी तरफ जो है वो पलट गया, मैंने यू टर्न कर लिया आपकी तरफ। इसको कहते हैं तौबा। तो मोमिन के दिल के अंदर गुनाहों की तरफ रग़बत नहीं होती, गुनाहों की ख्वाहिश नहीं होती। शैतान वो भी हार नहीं मानता, उसने भी कस्में खाई है ना अल्लाह ताला के सामने कि जी मैंने इन लोगों को भी छोड़ना नहीं है, तो वो किसी ना किसी तरीके से ना बहकाता ही रहता है, कोशिशें करता रहता है। तो फिर एक मोमिन जब अपने जाहिरी गुनाहों से तौबा कर लेता है और इबादत के रास्ते के ऊपर आ जाता है, तो कभी ये भी होता है कि शैतान उसको इबादत के रास्ते के ऊपर भी गुमराह करता है। वो किस तरह से, मिसाल के तौर पर हम अक्सर अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं कि इबादत करने का तो बहुत शौक हो गया, अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने की बड़ी फिक्र हो गई और अल्लाह ताला के लिए जो है वो नेकियां करने की बड़ी फिक्र हो गई, लेकिन हम जो है वो मामलात के मामले में बहुत ज्यादा कोताही करते हैं और मामलात की यानी इंसानों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको हम कम अहमियत देना शुरू कर देते हैं। तो इस दफा अगर आप लोगों को मौका मिला हो और आपने हजरत के बयानात ईशा के बाद वाले सुने हो ज़ैम्बिया एतिकाफ से, तो आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला के हजरत ने इस दफा के खुसूसी जो बयान होते हैं रात के उसके अंदर दीनदारों की तबीयत सेट कर दी। हमारी कराची की स्लैंग में बोला जाता है कि जी फलाने ने जो है इसकी तो तबीयत सेट कर दी, इसको तो ठीक करके रख दिया। तो वो जो सारे के सारे बयानात थे वो थे मामलात के ऊपर, मकारिमुल इखलाक के ऊपर, इखलाक के को तमाम मुकम्मल, कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मुझे बुइस्तु लिउतिम्मा मुकारिमुल इखलाक, कि मुझे जो है वो इखलाक को तमाम यानी उसको इंतहा तक पहुंचाने के लिए मुझे दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया गया। तो मकारिम इखलाक के बारे में जो मशाइख ने बातें बताई तो उनको 10 बयानात के अंदर तफसील के साथ खोल दिया। मकारिम इखलाक की जरूरत किसको पड़ती है, किसी बेदीन इंसान को जरूरत नहीं पड़ती, जो बिल्कुल दीन से फारिग है वो चाहे अपने तौर पर जितना भी इखलाक बा इखलाक हो लेकिन वो अल्लाह ताला की रजा के लिए तो इखलाक पे अमल नहीं कर रहा होता, उसकी नीयत जो होती है वो अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं होती। उसकी नीयत इखलाक की क्यों होती है, कि उसके नफ्स को अच्छा लगता है, ही फील्स गुड अबाउट इट और पीपल अराउंड हिम दे प्रेज हिम फॉर डूइंग दैट, और वो जो है वो उन लोगों को देखता है जो कि दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा डिसेंट लोग समझे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो इस दुनिया के अंदर जिनको के वी लुक अप टू देम लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वो जो है वो इखलाक के अंदर बहुत ऊपर बढ़े हुए हैं, तो वो चाहता है कि मैं भी इन जैसा बन जाऊं, तो इस वजह से इखलाक के ऊपर अमल कर रहा होता है, इखलाक जो है वो उसके अंदर हमें नजर आते हैं। लेकिन जो दीनदार आदमी होता है तो वो जो भी अच्छा खुल्क अपनाता है वो फकत अल्लाह की रजा के लिए अपनाता है, वो अपने आप को खुश करने के लिए नहीं अपनाता। तो ये इखलाक अलग होते हैं, वो इखलाक अलग होते हैं। लेकिन दीनदार जब इंसान बनता है तो उसको फिर शैतान इस तरीके से बहकाता है कि तुम अपनी इबादात के को सबसे ज्यादा अहमियत दो, तुम अपनी इबादात के अंदर जो है वो अपना सारा वक्त लगाओ और उसके ज्यादा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं है। तो इस तरह से शैतान बहकाता है कि उसको इखलाक की तरफ से जो है ना वो उसका उसकी तवज्जो हटा देता है। तो फिर क्या होता है कि फिर हम ज्यादा से ज्यादा नेकी करना चाहते हैं, यानी नेकी हम समझते हैं कि जी कुरान पढ़ना नेकी है, हम समझते हैं जी कि नई लंबी लंबी नमाजें पढ़ना नेकी है और जो है वो नफिल रोजे रखना नेकी है और इसके अंदर किसी की ऐसी की तैसी हो जाए उसकी हमें फिक्र नहीं होती, हमारे घर वालों की क्या के साथ क्या गुजर रही है, हमारे वालदैन के साथ क्या गुजर रही है और हमारे जो है वो बीवी के साथ या शौहर के साथ क्या गुजर रही है, बच्चों के साथ क्या गुजर रही है, इसकी हमें फिक्र फिर नहीं रहती। तो इस वजह से जो ये बात कही गई कि हजरत ने ان مکارم اخلاق کے بیانات کے اندر دینداروں کی طبیعت کو سیٹ کیا ہے. وہ اسی لیے کی گئی کہ دیندار ہی جو ہیں وہ جب عبادت کے راستے میں پڑھتے ہیں تو اخلاق کے معاملے میں پھر بہت زیادہ کوتاہی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارا تو یہ حال کہ ہم نیکی کے راستے سے بھی گناہ کرتے ہیں کہ جی ہم کیوں کسی کے اوپر گرم ہوتے ہیں, کیوں کسی کو اپنا غصہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ مجھے زیادہ نمازیں نہیں پڑھنے دے رہا, یہ شخص جو ہے وہ اس نے مجھے کچھ کام دے دیے ہیں اور یہ جو اس سے میری ایکسپیکٹیشنز ہیں تو میں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا, میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا, اب جو ہے وہ غصہ نکال رہے ہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کے اوپر. حالانکہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ جو نفلی عبادتیں ہیں یہ کرنے سے ہمیں وہ مقام ہرگز نہیں مل سکتا جو کہ گناہ کو چھوڑنے سے ملتا ہے. اور کسی اپنے ساتھ والے کے دل کو دکھانا اپنی زبان سے, اپنی حرکتوں سے, یعنی انسسٹ کر کے اپنی حرکتوں کے اوپر, ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ سے غلطی ہو گئی کسی کے معاملے میں, اب آپ اسے سوری کر لیں یا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ رکھیں کہ وہ آپ کی بات کو آئے گئی ہو جائے گی, وہ آپ کو معاف کر دے گا, آپ اسے معافی مانگ لیں گے, اچھا ایک تعلق بنا لیں گے, ایک تو وہ معاملہ ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک یہ کہ جی تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے یہ کام نہیں کرنے دیا, یہ نفلی عبادت نہیں کرنے دی, اور وہ جو ہے وہ ایسے کیوں کرتا ہے کہ میں تو یہ قرآن نہیں پڑھ سکا, اور میں تو یہ نہیں کر سکا, اور میں تو وہ نہیں کر سکا, نیکی کے کام نہیں کر سکا, تو وہ تو گناہ ہے. اور یہ نفلی کام جو ہے وہ اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں پہ غصہ ہو رہے ہیں, آپ اپنے جو ہے وہ معاشرے والوں پہ غصہ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ملنے والا ہے ایسے نفلی عبادت سے. فرض عبادت کی بات نہیں ہو رہی, نفلی عبادت کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے جس سے کہ آپ نے دوسروں کا دل دکھایا جان بوجھ کر کے, انسسٹ کر کے, کوئی آپ کو سمجھا بھی رہا ہے لیکن نہیں اڑے ہوئے اس کے اوپر, یہ زیادہ ضروری تھا, وہ زیادہ ضروری نہیں تھا. تو اس وجہ سے مکارم اخلاق جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جو حضرت کے بیانات ہیں یہ عاجز خود بھی ارادہ رکھتا ہے بلکہ کوشش کر رہے ہیں آلریڈی, وہاں بیٹھ کر کے بھی بیانات کے اندر نوٹس بنائے تھے, اور سب کے ساتھ سب کو یہی ایڈوائز ہے کہ ان تمام بیانات کو ہم بار بار سنیں, اور خالی سنیں نہیں بلکہ نوٹ بک لے کر کے بیٹھیں اور ان کے نوٹس بنائیں, اور ان کے اندر سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو کہ ہم سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. یعنی ہر چیز 100% پورا بیان جو ہے وہ ہر ایک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا, کسی کے اوپر کوئی چیز اپلائی ہوتی ہے, کسی کے اوپر کوئی چیز اپلائی ہوتی ہے, تو جو چیزیں ہماری اپنی زندگی پہ ہمارے اپنے گھر کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ ہائی لائٹ کریں. بیان جو ہے وہ سننے کے اندر ایک گھنٹہ لگتا ہے, اس کے اندر آپ رینڈملی ایکسس نہیں کر سکتے کہ کون سی بات کہاں پر تھی, لیکن جو آپ نوٹس لکھ لیں گے تو وہ نوٹس کو جو ہے وہ آپ رینڈملی ایکسس کر سکتے ہیں, وہ سامنے رکھیں گے ایک نظر کے اندر سب کچھ نظر آ جائے گا کہ یہ کیا بات تھی, کیا بات تھی, کون سی بات مسئلے لے ریٹ تھی, وہ ہائی لائٹڈ ہے, تو وہ زیادہ آسان ہوگا. تو اس طریقے سے ہم نے اس قواعد کے اوپر بھی محنت کرنی ہے. اب کوئی وجہ تھی, یہ جو اللہ والے کام کرتے ہیں نا تو ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ دراصل الہامی ہوتے ہیں, کسی بھی بات یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ الہامی ہوتے ہیں. وہ کسی وجہ سے, الہام کیا ہوتا ہے کہ دل میں بات ڈال دی گئی ہوتی ہے, ہمارے دل میں بھی باتیں آتی ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے, ہم ان کو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کرتے, اس وجہ سے ہم اس کو الہام نہیں کہتے بلکہ ہم اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اس کو اپنے دل میں آئی ہوئی ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں, اللہ کہ وہ کوئی گناہ کا خیال ہو, گناہ کو تو اللہ سے منسوب نہیں کر سکتے, لیکن جو اچھا خیال آیا وہ اس کو اپنے آپ سے منسوب نہیں کرتے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں, اور اسی کو کوٹ ان کوٹ الہام کہا جاتا ہے. یہ کوئی بہت ہی انہونی چیز نہیں ہے, کوئی جادو ٹونے والی بات نہیں ہوتی ہے الہام والی. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی اس اعتکاف کے اندر کیوں انہوں نے مکارم اخلاق کو اچھا باقاعدہ حضرت نے اس کو سمجھایا بھی نہیں, وہ تو لیٹ نائٹ بیانات کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں ارادہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ روحانی بیماریوں کے اوپر بات کریں, لیکن ہمارا ذہن چل ہی نہیں رہا تھا روحانی بیماریوں کے اوپر, ذہن چل ہی نہیں رہا تھا, تو بالآخر جو ہے وہ ایک چیز سامنے آئی کہ حکمت کے اوپر ایک چیز ملی تھی, حکمت کے اوپر بیانات کے کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ جو لیٹ نائٹ بیانات تھے پھر انہوں نے 10 بیانات حکمت کے اوپر کیے, حکمت کی باتیں ہمارے مشائخ نقشبند کی اقوال کی روشنی کے اندر سامنے پیش کریں. तो ये कि भाई मेरा दिमाग चल नहीं रहा, मेरा जहन चल नहीं रहा इस बात के ऊपर बल्कि किसी और के ऊपर चल रहा है, ये सब कहां से होता है? ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ने आपका जहन इस बात पे चलने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला चाहते थे कि जो सामने बैठने वाले लोग हैं उनको ये बात नहीं बताई जाए बल्कि उनको हिकमत की बातें बताई जाए, तो फिर उनका दिमाग जो है वो हिकमत की तरफ चलना शुरू हो गया। उसी तरीके से जो दूसरे इशा के बाद वाले बयान थे वो खुसूसन मकारम अखलाक के ऊपर किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि जो मशायख होते हैं वो तो डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर के पास पेशेंट्स आकर के अपने अहवाल रखते हैं, तो अहवाल सुन सुन करके उनको पता लगता है कि भाई मेरे पेशेंट्स के अंदर आजकल जो है वो किस बीमारी जो है, कौन सी बीमारी जो है वो ज्यादा पाई जा रही है। तो नजर आता है कि हाँ भाई ये माशाल्लाह पेशेंट्स जो हैं वो आए, बहुत सारे गुनाह लेकर के आए थे लेकिन इतने सारे गुनाहों से उन्होंने पीछा छोड़ा लिया, अब जो है वो इबादतें कर रहे हैं, उनको इबादतों का शौक हो गया है, कुरान पढ़ना उनको अच्छा लगना शुरू हो गया है, पहले कुरान उनसे उठता नहीं था, पहले उनसे नमाजें पढ़ी नहीं जाती थी, तहज्जुद में आँख नहीं खुलती थी, अब वो तहज्जुदें भी पढ़ रहे हैं, अब कुरान भी खूब पढ़ रहे हैं और अब जो है वो ये भी कर रहे हैं, लेकिन इखलाक की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जा रही। शौहर जो है वो अपनी बीवी के ऊपर जुल्म कर रहा है और बीवी जो है अपने शौहर के ऊपर जुल्म कर रही है और जो है ये हो रहा है और पड़ोसियों के हकूक का कोई ख्याल नहीं है और साथियों के हकूक का ख्याल नहीं है और सिलाए रहमी की तरफ तवज्जो नहीं है। अब कितने हमारे लोग हैं, हमें हैरत होती है कि इतने दीनदार लोग, लंबी लंबी दाढ़ी भी रखी हुई है मर्दों ने और औरतें जो है वो बुर्का भी कर रही हैं, दरस कुरान भी हो रहा है और ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, और जब अंदर जाकर के हालात पता लगे तो अपने बहन भाइयों के दरमियान बातचीत बंद है, सालों गुजर गए बातचीत नहीं होती, सिला रहमी का ये हाल है। इतने दीनदार खानदान, दूसरे बाहर से बैठ करके देखें तो एक आइडियल खानदान नजर आए लेकिन अंदर जाकर के देखें तो मालूम यह होता है कि जी सिले रहमी का यह हाल, कतः रहमी करके बैठे हुए हैं, पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों की जिंदगी अजीरन करी हुई है। तो ये बातें जो है वो फिर दीनदार लोग अक्सर इन चीजों से तवज्जो हट जाती है, इस वजह से इतनी तफसील के साथ अगर टोटल किया जाए तो 10 घंटे से ज्यादा के बयान बनते हैं और उसके अंदर वही हदीसें हैं और वाकयात हैं और मिसालें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है उसके अंदर। तो एक दूसरे का हक मारना, एक दूसरे के साथ ज्यादती करना, एक दूसरे की कदर ना करना, नाशुक्री करना, ये भी गुनाह होता है और बल्कि बड़े गुनाहों में से होता है। और हम सब ये बात जानते हैं कि हुकूकुल्लाह जो है वो तो अल्लाह ताला माफ भी कर देंगे लेकिन हुकूकुल इबाद ये बंदों से बख्शवाने पड़ेंगे, बंदों से माफ करवाने पड़ेंगे, तो इस वजह से इनकी हमारे लिए और भी ज्यादा अहमियत है। और आखिरी बात करके या जिस खत्म करेगा कि हमारे बुजुर्गों ने इसको इस तरह से समझाया कि जो इखलाक होते हैं ना, अच्छे इखलाक इंसान के, वो दरअसल उसकी इबादात के गिर्द एक प्रोटेक्टिव हिसार बनाए हुए होते हैं, एक फोर्ट्रेस बनाए हुए होते हैं, और वो इखलाक जो है वो गोया कि आपकी, या इखलाक दूसरे अल्फाज में आदाब भी कहते हैं उनको, एक दूसरे के साथ अच्छे आदाब के साथ पेश आना, वो भी इखलाक ही का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक दूसरा तरीका है समझाने का। आदाब जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है एक मोमेंट के लिए, जो कि शैतान को जो है वो बाहर रख कर रख, उसकी उसके शहर से, उसके दिल से उसको, शैतान को दूर करके रखता है। अगर आदाब की, इखलाक की बाउंड्री गिर जाए या हो ही ना सिरे से, जैसा कि हम इस अक्सर का यह हाल है कि वो अभी तक खड़ी नहीं हुई, तो अगर वो वाली बाउंड्री ना हो तो शैतान जो है वो फिर डायरेक्टली हमारी नेक्स्ट बाउंड्री के ऊपर अटैक करता है जो कि हमारी इबादत की बाउंड्री होती है। और इबादत के अंदर फिर हमारे मशायख ने मुख्तलिफ लेवल्स बताई कि जी नफलें जो है वो सबसे आउटर बाउंड्री है, फिर उसके बाद जो है वो सुनन की बाउंड्री आती है, फिर उसके अंदर जो है वो फराइज की बाउंड्री आती है, तो फिर शैतान जो है वो नफिल की बाउंड्री गिराता है, फिर नफिल की बाउंड्री के बाद जो है वो सुनन की बाउंड्री को गिराता है, सुनन की बाउंड्री गिराने के बाद फिर फराइज की बाउंड्री को गिराता है। इसी वजह से जो लोग नवाफिल का एहतमाम नहीं करते उनकी सुन्नतें जो है वो एक्सपोज होती हैं, बड़ी आसानी से छूट जाती हैं, और जो सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते फिर उनके फराइज जो है वो शैतान से एक्सपोज होते हैं, बड़ी आसानी से फराइज की बाउंड्री जो है वो शैतान गिरा देता है, और फराइज की बाउंड्री के बाद कोई और बाउंड्री नहीं है। फराइज की बाउंड्री के अंदर हमारा हीरा पड़ा हुआ है, हमारा कुल असासा फराइज की बाउंड्री के अंदर पड़ा हुआ है, और वो क्या असासा है? वो हमारा ईमान है। तो जिसकी फराइज की बाउंड्री नहीं होती तो फिर उसका ईमान एक्सपोज होता है। सुबह को है, शाम को नहीं होगा, शाम को था, सुबह को नहीं होगा। कभी किसी ने आके कोई बात कान में डाल दी, फौरन जो है वो शक व शुबे में पड़ गए, और शक जो है वो ईमान को जायल कर देता है। कभी किसी ने आके कुछ कह दिया, कभी हालात जो है वो दुनिया के देखे, न्यूज़पेपर पढ़ा, और ईमान जो है वो डामाडोल होना शुरू हो गया कि जी मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर मुसलमानों का खुदा है तो फिर वो मदद क्यों नहीं करता, और काफिरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। ईमान डामाडोल हो गया, अल्लाह ताला के ऊपर डाउट करना शुरू हो गए। और क्या होता है ईमान का डामाडोल होना? अल्लाह ताला को जो समझता हो, अल्लाह ताला के ऊपर जिसका ईमान हो, तो वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जी काफिर जो है वो दुनिया में इतने अच्छे तरह से क्यों रह रहे हैं और मोमिन जो है वो क्यों अच्छी तरीके से नहीं रह रहा है। इसका मतलब यही है ना कि उसको अल्लाह ताला का पता नहीं है, अल्लाह ताला के ऊपर कुछ शक शुबा आ गया। तो फराइज की बाउंड्री अगर ना हो, तो इसी तरीके से ये तरीके होते हैं शैतान के ईमान के ऊपर डोरे डालने के, ईमान को जायल करने के, ईमान को जाया करने के। तो मोमिन हर किस्म के गुनाहों से नफरत करता है, चाहे वो बेपर्दगी का गुनाह हो, चाहे जो है वो शहवत का गुनाह हो, चाहे जो है वो झूठ बोलने का गुनाह हो, चाहे जो है वो अपने साथ रहने वालों के दिल दुखाने का गुनाह हो, अपने साथ काम करने वालों के साथ जो है वो बददियानती का गुनाह हो, कोई भी गुनाह जो है वो मोमिन जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो हर गुनाह के बारे में पैरानॉइड होता है, और वो इस बात को समझता है कि मैंने अगर एक गुनाह को कर लिया और उसके और उस पर मैंने तौबा नहीं करी, या उसको मैंने करा और मेरे दिल में कोई कराहियत नहीं थी उसके बारे में, मेरे दिल में उसके बारे में कोई नफरत का जज्बा नहीं था और मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं थी, बस मैंने कर लिया क्योंकि सब कर रहे हैं, मुझे इन्विटेशन मिली, मैंने कहा चलो जी बच्चों का खेल है, चलो हम भी चले जाते हैं, चलो जी बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को भी भेज देता हूं, कोई बात मसला नहीं है, तो होता रहता है, तो छोटी मोटी बात है। यानी दिल में नफरत तो नहीं थी ना, दिल में कराहियत तो नहीं थी ना, मजबूरी तो आपके ऊपर किसी ने नहीं, कोई फितने का डर भी नहीं था। अगर फितने का डर था वो भी एक अलग चीज है, वो भी इंसान कंसिडर कर सकता है कि जी बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा और इस दफा जो है वो हम कराइयत के साथ बच्चों को समझा करके, अपने आप को समझा करके हम बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, नहीं जाएंगे तो एक कोई सिचुएशन, अभी कोई उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कि भाई कोई बहुत बड़ा खानदान में फितना, किसी कोई भरा बैठा हुआ था खानदान में पहले ही, अब अगर आप नहीं जाएंगे तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा उसने सिचुएशन क्रिएट कर देनी है, और उसने जो है वो आपका भी जीना जीना दोबर कर देना है, और दूसरों के साथ भी उसने बहुत बुरा मामला करना है, एक बहुत बड़ा फितना खड़ा कर देगा, तो जी मैं चला जाता हूं उसकी पार्टी के अंदर। वो एक अलग सिचुएशन है, और वो भी जो है वो बेहतर यही है कि किसी से पूछ करके ऐसा कदम उठाए, किसी आलिम से जो कि आपको अनबायस ओपिनियन दे और आपको समझा दे कि हाँ ठीक है अभी आप ऐसा कर लें। खुद से ऐसे मामले में भी जो है वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना पड़ गया वो एक अलग मामला है। तो मोमिन जो है वो हर चीज, इस किस्म के हर मामले के बारे में ऐसे, यानी गोया के हर हर स्टेप, कहते हैं ना उर्दू जुबान में फूंक फूंक के रखना, फूंक फूंक के रखने का क्या मतलब है कि आप हर स्टेप को अपने इवेल्युएट करते हैं कि मेरा कदम जो है वो किधर पड़ रहा है, क्या मेरा ये कदम जस्टिफाइड है, हाउ एम आई जस्टिफाइंग दिस कदम, मैं अपने इस स्टेप को कैसे अल्लाह के सामने जस्टिफाई करना है ना, मैं अपने इस कदम को अल्लाह के सामने कैसे जस्टिफाई करूंगा। ये मोमिन का की जिंदगी का दस्तूर होता है, ये मोमिन की जिंदगी का आईन होता है, और इसी को हमारे मशायख नक्शबंद ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, जो टर्म इस्तेमाल की, नजर बर कदम, बल्कि नजर बर कदम का जो एक्चुअल वो तो खैर दूसरा मामला है कि आगे अपने मशायख के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नजर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हमारे मशायख चल रहे हैं और हम अपने मशायख के पीछे चल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है हमने, इस वजह से हम तो उस शेख के पीछे चल रहे हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा है, जो कि सुन्नत को अपने दाढ़ों से पकड़ करके चल रहा है, शरीयत को उसने संभाला हुआ है, उसके ऊपर अमल कर रहा है। तो चूंकि उसने अपने शेख को देखा था, फिर उसने अपने शेख को देखा था, उसने अपने शेख को देखा था, और उन्होंने जाकर के सहाबा को देखा था, सहाबा ने मिसरा सलम को देखा था, तो इसको कहते हैं नजर बर कदम, कि हमने तो आगे उनके कदम पे नजर रखनी है। और हमने उनके पीछे चलना है क्योंकि वो शरीयत और सन्नत के पीछे, इसलिए नहीं कि जी हमें उनसे मोहब्बत है, बड़े खूबसूरत लगते हैं इस वजह से, या बड़ा अच्छा बयान करते हैं जी इस वजह से, नहीं, शरीयत के ऊपर वो चल रहे हैं। वी नीड अ मॉडल एज ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन नॉट गो बाय थ्योरी, वी नीड प्रैक्टिकल। हमें एक मॉडल चाहिए, हम किताबों से अपना दीन नहीं लेते, हम दीन मॉडल से, लिविंग मॉडल से लेते हैं, इस वजह से हम उनके कदम को देखते हैं। किताबों से हम नॉलेज हासिल करते हैं, फैक्ट्स हासिल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए वी नीड अ मॉडल। इस वजह से नजर बरकदम की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पे इस टॉपिक से जो रिलेटेड बात थी वो ये है कि मोमिन जो है वो अपने हर हर कदम के ऊपर नजर रखता है कि मेरा ये कदम जो है वो अल्लाह के सामने कैसे जस्टिफाई होगा, क्या मैंने किसी से पूछा है कि नहीं, क्या मेरा कदम जो है वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं, क्या मेरा कदम सुन्नत के खिलाफ है या नहीं, क्या मेरा जो कदम है वो किसी बड़े फितने को अवॉइड करने के लिए है या नहीं, या फिर ये कि सबसे अच्छी बात तो ये कि मेरा कदम शरीयत के मुताबिक है और मैंने बस वही रखना है जो कि शरीयत के मुताबिक है। एक एक चीज को वो जस्टिफाई कर रहा होता है। वकूफ़ कल्बी का जो हमारे यहाँ मामूल है इसका मकसद यही है। मुराकबा तो आप एक घंटा बैठेंगे ना, आधा घंटा बैठेंगे जी अल्लाह को याद कर रहे हैं, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, लेकिन बाकी 23 घंटों का क्या होगा? बाकी 23 घंटों में क्या अल्लाह ताला की नाफरमानी, कदम उठा रहे हैं और फिक्र ही नहीं है किधर कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए वकूफ कल्बी है। 23 घंटे आपने वकूफ कल्बी से गुजारना है। और वकूफ कल्बी क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखना, और अल्लाह ताला भी ध्यान रखना, और कदम जो है वो अपनी मर्जी से उठ रहे हैं और ध्यान अल्लाह ताला की तरफ है, इसको वकूफ कल्बी नहीं कहते हैं। फॉलो अपने नफ्स को कर रहे हैं और जी मेरा तो ध्यान अल्लाह की तरफ है, ये अल्लाह ताला के साथ एक गेम प्ले करना होता है, तो वकूफ कल्बी नहीं कहते। वकूफ कल्बी वही होता है कि इंसान जो है वो अपने हर कदम को वॉच करे, सही उठ रहा है तो बहुत अच्छा, गलत उठ गया अल्लाह तौबा, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, मैंने फौरन तौबा करके यू टर्न ले लेना। तो आज की पूरी इस बहस का लुब्बे लुबाब जो कि टेक होम पॉइंट है ना, वो ये है हमारे मुआशरे के, हमारे जो सेटअप के लोग हैं उनके लिए जो रेलिवेंट पॉइंट है वो ये है कि हर गुनाह छोटा हो या बड़ा वो अल्लाह ताला के रास्ते से 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। हर गुनाह, किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं समझ सकते ही नहीं है। वही मिसालों से भी बड़े समझाते हैं जी, ये बड़े की नाफरमानी छोटी हो सकती है जी? मैं तो मुल्क के सदर के सामने गया और मैंने उनसे थोड़ी सी बदतमीजी कर दी। मैं जो है बादशाह सलामत के पास गया, मैं तो चीफ ऑफ द आर्मी के पास गया और बड़ा वो फिरौन था और मैंने उससे बस छोटी सी बदतमीजी करी। कोई चीज छोटी नहीं होती, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, वो लीगैलिटीज के लिए होता है कि जी कोर्ट कैसे फैसला देगी, जो काजी होगा वो कैसे फैसला देगा, और जो इमाम के पास आप जाएंगे कोई मसला पूछने के लिए तो उसने आपको क्या मसला बताना है। ये जो सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह होते हैं ना, ये उस काम के लिए होते हैं, इसको आप छोड़ दें। ये सालिक के लिए नहीं होता है कि जी सगीरा जायज हो गया और कबीरा नाजायज हो गया। सालिक के लिए हर गुना, मोमिन के लिए बल्कि हर गुना बड़ा गुना होता है, और हर गुना अल्लाह ताला के रास्ते से बिल्कुल ऑपोजिट है, और तौबा जो है वो हर गुना से 100% अल्लाह ताला की तरफ अपने रुख मोड़ने को, इसको तौबा कहते हैं। छोड़ना जो है वो एक अलग प्रोसेस है, उसके अंदर टाइम लगता है, उसके लिए जो है वो लोगों की सोहबत की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जिक्र अस्कार करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जो है राबता शेख की जरूरत पड़ती है, उसके लिए फुलाने की जरूरत पड़ती है। वो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जिंदगी में वो कर भी नहीं पाते, चंद गुनाह छोड़ पाते हैं, बाकी गुनाहों के साथ ही इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन तौबा अगर कर ली होती है तो फिर उनसे मुआवजा नहीं होता। अगर जो भी तो जो भी गुनाह उससे हो रहा है, अगरचे के वो मर भी इसी हालत में रहे, लेकिन तौबा तो कर रहे थे ना, छूटा नहीं उनकी जिंदगी से, वो गुनाह निकला नहीं, मौत आ गई। अब क्या उनको जहन्नुम में जलाया जाएगा उस गुनाह की वजह से? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए कि वो तौबा करते थे, कोई गुनाह उन्हें जस्टिफाई नहीं किया, तौबा करते रहे। अल्लाह ताला की जात से हमें ये अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी के अंदर, अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, कि ए अल्लाह मैं कमजोर हूं, मैं खुद गुनाह नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन ए अल्लाह मैं तौबा के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, तौबा के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तौबा में आपकी तरफ 100% यानी मैं रुजू आपकी तरफ 100% कर रहा हूं, मैं अपना रुख जो है वो 100% आपकी तरफ मोड़ रहा हूं, गुनाह छोड़वाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन ए अल्लाह आपके लिए बहुत आसान है, आप मेरे गुनाहों को छुड़वा दें, मेरे घर वाले नहीं छोड़ने दे रहे, मेरा शौहर नहीं छोड़ने दे रहा, मेरा बाप नहीं छोड़ने दे रहा, मेरा दफ्तर वाला नहीं छोड़ने दे रहा, लेकिन ए अल्लाह वो मेरे ऊपर तसल्लुत नहीं रख सकता, आप मेरे ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और आप जिस तरह मेरे परवरदिगार हैं आप उसी तरह से मेरे शौहर के भी परवरदिगार हैं, उसी तरह से मेरे मैनेजर के भी परवरदिगार हैं, आप उसके भी खालिक हैं, आप मुल्क के प्रेसिडेंट के भी आप मालिक हैं, आप जो है वो उस पूरे माहौल को भी चलाने वाले हैं। ए अल्लाह ये जितनी चीजें मुझे जो है वो अपने आप से तो ज्यादा स्ट्रांग लगती हैं, अपने आप से ज्यादा पावरफुल लगती हैं, लेकिन ए अल्लाह आपसे तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं है ना, तो ए अल्लाह आप जो है वो मेरी मदद फरमा दीजिए, आप इन लोगों के दिल बदल दीजिए या फिर उनको मेरे रास्ते से हटा दीजिए, ये मेरा रास्ता ना रोक पाए, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। ए अल्लाह मेरे रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं ए अल्लाह उनको मेरे रास्ते से या तो गिरा दीजिए उनको या फिर मेरे रास्ते से हटा दीजिए, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। और 100% मोमिन का गुमान, मोमिन का यकीन, बल्कि गुमान नहीं बल्कि यकीन कि अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने के लिए जो भी संजीदा होता है, जो भी सच्ची तलब रखता है, जो भी अल्लाह ताला की तरफ पहुंचना चाहता है, अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने से उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मुल्क का सदर तो छोड़े वो तो दूर बैठा होता है, वजीर आला छोड़े वो तो बहुत दूर बैठा, वो तो दूर बैठा होता है, उसका मैनेजर वो तो दफ्तर में बैठा होता है, उसके अपने घर के अफराद उसको नहीं रोक सकते, होता ना जो साथ रहते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ लेटते हैं, साथ जागते हैं, साथ सोते हैं, वो बंदा उसका रास्ता नहीं रोक सकता, हालांकि वो मुस्तकिल उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने में अगर इसकी नेक, इसकी सच्ची तलब है तो अपने परवरदिगार तक इवन ऐसे लोग भी इंसान को नहीं रोक सकते। तो बेसिकली द एंड रिजल्ट इज कि वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मैं तो तेरी तरफ पहुंचने में बिल्कुल सीरियस था और मेरी बीवी ने मुझे नहीं पहुंचने दिया, मैं तो तेरी तरफ पहुंचने में बिल्कुल सीरियस था और जी मेरी माँ ने मुझे नहीं पहुंचने दिया। जो कहते हैं ना लोग कि जी ये तो माँ बाप की तो बात माननी होती है ना जी, तो जी माँ बाप की बात मानने के लिए तो हमारे दीन ने कहा है ना जी, तो माँ बाप के तो हुकूक होते हैं जी, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं तो बेबस। ओ भाई अल्लाह के बंदे, माँ बाप तुम्हें किसने दिए हैं, माँ बाप को तुम्हें किसने दिया है, अल्लाह ताला ने दिया है, माँ बाप के हुकूक बेशक हैं, अल्लाह से ज्यादा नहीं है, अल्लाह के महबूब से भी ज्यादा नहीं है, तो हम माँ बाप को भी एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि जी मेरी माँ मुझे नहीं नेक बनने देती, या मेरा बाप मुझे नहीं नेक बनने देता, क्या हमें मालूम नहीं कयामत के दिन माँ ने क्या करना है हमारे साथ, क्या मालूम नहीं है कि माँ ने हमें पलट के भी नहीं पूछना, कयामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी इंसानियत जो है वो उरियानन खड़ी होगी, उरियानन बिल्कुल बेलिबास। आयशा रतरान पूछती हैं कि मर्द और औरत सब साथ बेलिबास, तो क्या मर्द औरतों को, औरतें मर्दों को नहीं देखेंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन इतनी वहशत होगी, इतनी वहशत होगी कोई किसी को नहीं देखेगा, उस दिन माँ अपनी औलाद को अबैंडन कर देगी, उस दिन भाई अपने भाई को अबैंडन कर देगा, बहनें नहीं पूछेंगी भाइयों को, बाप नहीं पूछेगा बेटों को, तो भाई जब पूछना ही नहीं है उस दिन तो अल्लाह ताला की नाफरमानी में क्यों हम दूसरों को बहाना बनाए कि जी बाप नहीं नेक बनने देता था और माँ नहीं नेक बनने देती थी और बीवी नहीं नेक बनने देती थी या शौहर नहीं नेक बनने देता था। अल्लाह ताला हम सब के लिए नेक बनना आसान फरमाए और मुकम्मल तौबा करना हमारे लिए मुमकिन बनाए। तो आखिर दावाना अनिलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसे हटकट कर अल्लाह ताला की याद में भूल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान रब्बिना अल-वहाब اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اے کریم آقا ہم تیرا عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما گناہوں کو معاف فرما نگاہوں کو صاف فرما دلوں کو پاک فرما چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہت کمزور پاتے ہیں ہماری مدد فرما اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما اے اللہ ہمارے نفس اماروں کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما اے اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم نے ابھی کاٹا اے اللہ اس مہینے میں جتنی بھی عبادات کرنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی اے اللہ ان تمام عبادات کو ہم سے قبول فرما اے اللہ ہمیں ایک اور رمضان المبارک دیکھنے کی سعادت نصیب فرما اے اللہ رمضان المبارک کے درمیان جو عرصہ ہے ان تمام عرصے کے اندر بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کرنے میں آپ نے جو اس کا مقصد بتایا کہ لعلکم تتقون اے اللہ اس تقویٰ کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما نیک بننا آسان فرما گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما اے اللہ اپنے ذکر کی لذت کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دین کے کاموں کے لیے قبول فرما اے اللہ عبادات کرنے بھی آسان فرما اے اللہ معاملات کرنے بھی بہترین طریقے سے آسان فرما اے اللہ جو بھی کسی کے اوپر ہمارے حقوق آتے ہیں اے اللہ ہم اپنی طرف سے ان حقوق کو بخشتے ہیں اے اللہ ان کے جو حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں اے اللہ ان کو آپ اپنی رحمت سے بخشوا دیجئے اے اللہ ہم نے یہ سنا اے اللہ بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ کچھ لوگ ایسے قیامت کے دن آئیں گے جن کے اوپر کے دوسروں کے بہت سارے حقوق آتے ہوں گے لیکن آپ کا ان لوگوں کے ساتھ ایسا خصوصی معاملہ ہوگا کہ آپ حقوق والوں کو اپنی نعمتوں کے اندر سے عطا کریں گے اور اس کے بدلے ان سے کہیں گے کہ ان لوگوں کے حقوق معاف کر دو اے اللہ ہمیں اپنے ساتھ ایسا تعلق نصیب فرما دیجئے اے اللہ ورنہ تو لوگوں سے اپنے حقوق معاف کروانا ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں اے اللہ ہم تو کسی سے معافی مانگنے کے لیے کی بھی زبان اپنے اندر نہیں رکھتے اے اللہ اپنے اندر یہ حوصلہ نہیں رکھتے کہ ہم ایک ایک کے پاس جا کر کے اس سے معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ ہم نے تمہارا بہت دل دکھایا ہم نے تمہارے بہت حقوق مارے ہمیں معاف کر دو اے اللہ اس حالت میں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اے اللہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اے اللہ ہمارے پاس تو نیکیاں بھی نہیں اے اللہ ہمارے پاس تو عبادات بھی نہیں اے اللہ عبادات بھی ہم زائل کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں ریاکاری کے ذریعے عبادات بھی ہم جو ہے وہ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے غلط طریقے سے انجام دے کر کے اے اللہ پتہ نہیں ہماری کوئی عبادت قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں اور اے اللہ اس دن تو وہ لوگ ہم سے قبول ہوئی ہوئی عبادتیں ہی لینے کے لیے آئیں گے اے اللہ جو عبادتیں قبول ہی نہیں ہوئیں حق والے ہم سے وہ مانگنے کے لیے کیوں آئیں گے وہ تو قبول ہی نہیں ہوئیں وہ تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے اے اللہ جو ہماری تھوڑی بہت اگر کوئی ایسی قبول ہوئی ہوئی عبادت ہے اے اللہ حق والے ہم سے آ کر کے وہ بھی لے جائیں گے اے اللہ ہم تو بالکل تہی دامن ہیں اے اللہ ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ ہیں اے اللہ بھلا ہم کیسے جنت میں داخل ہوں گے اے اللہ نہ عبادات ہیں اللہ ہم نے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا اے اللہ بہت گناہ کیے بہت لوگوں کے حق مارے اے اللہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا اے اللہ ایک آخری آسرا ہمارا یہ رہ گیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے آپ کو منا لیں کسی طریقے سے آپ کی ایسی محبت اپنے سینوں میں پیدا کر لیں کسی طریقے سے اے اللہ ہم آپ کی محبت کما لیں کہ قیامت کے دن آپ جو ہے ہمارے اور ہمارے حقوق والوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں اور اے اللہ اپنی نعمتیں آپ کی نعمتیں جن کا کہ کوئی حساب نہیں جن کے لیے اے اللہ کوئی اس کا شمار نہیں اے اللہ آپ اپنی نعمتوں میں سے عطا کر کے ہمارا پیچھا چھڑوا دیں اے اللہ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی آسرا نہیں اے اللہ کوئی ہمیں امید نہیں اے اللہ بس آپ ہی کی ذات سے ایک امید ہے اے اللہ حق والوں سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں کہ وہ ہمیں معاف کر بھی دیں گے اے اللہ معافی مانگنا تو دور کی بات اور اس کے بعد پھر ان کو معاف کر دینا یہ تو اور بھی زیادہ دور کی بات اے اللہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا یا اللہ اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے اے اللہ اپنے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ آسان فرما دیجئے، مہربانی والا معاملہ فرما دیجئے، عفو و درگزر والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حقوق بھی معاف کروا دی کر دیجئے، اور اے اللہ حقوق والوں کے حقوق بھی معاف کروا دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے اور تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔